Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Dhan ke liye artha, isliye kaha jata hai, kyunki wo chaha jata hai, jisko chaha jaye, usko artha kehte hain. Mane chaha jaye, जहां चाहने का प्रारंभ है लेकिन चाह का अंत नहीं है उसको अर्थ बोलते हैं। आप चाहते हैं, आप केवल चाहते हैं, उस चाह का अंत है क्या? चाह का अंत नहीं है, उसका आदि है। चाहने का प्रारंभ तो जरूर है, प्रारंभ तो होता है चाह का, लेकिन उसका अंत होता है क्या? नहीं, इसलिए उसको अर्थ बोलते हैं। और बालक नचिकेता के जीवन में वो चाह ही नहीं ना, ना वहां कोई चाह का प्रारंभ ही नहीं है, इसलिए अर्थार्थी भी नहीं है। नारायण केवल वो चतुर्विध पुरुषार्थों में मोक्षार्थी है, और उनको इस सत्य का पता है कि ये मोक्ष जो हमें मिलेगा वो त्याग के बिना नहीं मिलेगा। और अत्यंतिक आप जिसको मोक्ष बोलते हैं ना, ये वास्तविकता तो ये है कि मोक्ष की चाह अनंत सुख की चाह है। मोक्ष की चाह अनंत सुख की चाह है। मोक्ष का चाहना अर्थ सुख की अचाह नहीं है। आप मोक्ष को चाह रहे हैं माने आप ऐसा सुख चाहते हैं जो कभी नहीं मिटने वाला हो। भौतिक पदार्थों के सुख के नश्वरता का पता चल गया। वैराग्य बालक नचिकेता ये जो वचन कह रहे हैं ना, उन्हें पता है दुनिया के कितने भी पदार्थ और उन पदार्थों से सुख हमें मिले तो बोलते कैसा है, तो उन्होंने कहा जीवितम अल्पमेव, बड़ा क्षणिक है, नश्वर नहीं है, और उससे मिलने वाला जो दुख है वो बहुत बड़ा है। इन भौतिक पदार्थों से मिलने वाला सुख बड़ा है कि दुख बड़ा? आप थोड़ा विश्लेषण करना। आपको सुख बड़ा मालूम पड़ता है कि दुख बड़ा मालूम पड़ता है? ज्ञानेश्वर महाराज ने एक वाक्य लिखा है, शायद ज्ञानेश्वरी का वाक्य हो, भोजन सुख महाग पाकु करिता, ऐसा लिखा। बोले भोजन का जो सुख है ना, बोले बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। भोजन का जो सुख है वो बहुत महंगा है। बोले कब? बोले आप बना के खाओगे तब। आपको बना के खाना है तो भोजन का सुख कितना बड़ा है, कितना सस्ता है? बोले बहुत महंगा है वो। आपको भोजन बना के खाना है, भिक्षा मांग के खाना हुआ तो अलग है, लेकिन आपको बना के खाना हो तो अरे बहुत कठिन है वो। एक बार की बात है, मैं बहुत छोटा था, 4-5 कक्षा में पढ़ता होगा, तो एक बार हमको चोरी करके खा रहे थे हम, और एक विद्यार्थी था, मकई के खेत में गए किसी के, बहुत अच्छी अच्छी मक्का दिखाई दी, अरे हमने कहा ये खाओ, तो हमने तोड़ लिया 4-5, हमने सोचा इसको सेक के खाएंगे, बच्चे थे और यही समय था चातुर्मास का, लेकिन नारायण हमने 2-3 घंटा कोशिश की लेकिन अग्नि नहीं जली। जितनी माचिस थी ना वो सारी माचिस खत्म हो गई, बस जलाते और वो बुझ जाती, लकड़ी गीलियां रहती उस समय, फूक मारते इधर करते माचिस ही खत्म हो गई, और उसके बाद भी जो गुस्सा आया डंडा मार मार के फिर उस अग्नि को खत्म कर दिया, जहां धुआं हुआ था सब। आपको यदि भोजन बना के खाना हो तो बहुत कठिन है, और धन कमाना क्या मधुबाबू कम सरल है? अरे बहुत कठिन है। एक बार धन आता है तो धन से धन हम कमा लेते हैं इसलिए सरल मालूम पड़ता है, सामग्री जुट जाती है इसलिए सरल मालूम पड़ता है, लेकिन आप पूछना लोगों को कैसे कैसे परिश्रम करते हैं, सुबह से शाम तक 12-12 घंटे दिन रात परिश्रम करते हैं तब जाके धन मिलता है। इसलिए आप सुख जो प्राप्त करते हैं ना वो बहुत छोटा है, लेकिन उसके मूल में कितना बड़ा कष्ट है। आपको अनाज मिलता है बहुत खुश हो जाते हैं ना, लेकिन किसान ढाई महीने तक तीन महीने तक वहां कितना कष्ट करता है, वो जमीन बना लेता है, बीज बोता है, फिर उसके बाद उसको साफ करता रहा दिन 24 घंटे, तीन महीने तक 24 घंटे उसमें लगा रहता है, कितना कष्ट है, हर दान मिला उसको। इसलिए बालक नचिकेता कह रहे हैं कि सुख तो बहुत थोड़ा मिलता है और उसको पाने के लिए कष्ट। अच्छा, आप सबसे ज्यादा दुखी अपने पत्नी से होंगे, पति से होंगे, आपको सबसे ज्यादा दुख किसने दिया, थोड़ा विचार करो तो। आपको सबसे ज्यादा दुख अपने घर वालों ने दिया कि बाहर वालों ने? आप सबसे ज्यादा दुखी बाहर से, बाहर वाला तो बड़ा सम्मान देता है वो आपको कभी डांटता फटकारता नहीं, लेकिन घर का आदमी, समझ में आया नहीं। इसलिए बालक नचिकेता कह रहे हैं ये सुख क्षणिक है, ये दुनिया का सुख बड़ा क्षणिक है और ये अल्प है, बड़ा महंगा है। इसलिए कहते हैं कि को रमे त कौन रमेगा, विवेकी पुरुष ऐसे सुख में कौन रमेगा जो हमें प्रतिक्षण दुख ही दुख देता है, और ये स्थायी भी तो नहीं है ना, मान लो चलो, लेकिन उस स्थायी भी नहीं मिला सुख, कब तक। सुबह बहुत प्रेम से आपके व्यक्ति ने बोला, बहुत खुश हुए, आप मान के मत चलना कि शाम को भी वही मिलने वाला है। आज तक मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, परम पूज्य महाराज श्री की बात सुना देते हैं। एक कोई सेठ जी आए, महाराज ने पूछा तो ठीक है, सेठानी ठीक है, हाँ बोले ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं रहता है। फिर अलग से महाराज ने सेठानी को पूछा, सेठ जी कैसे है, बोले महाराज ठीक है लेकिन ये ठीक नहीं। उन्होंने कहा वो ठीक नहीं, और इन्होंने कहा आप जहां रहते हो आपको सचमुच सामने वाला ठीक समझता है क्या, सामने वाला आपको सब कुछ दे लेकिन यही सोचेगा कि ये ठीक नहीं है, सब आप दुनिया के लिए बहुत ठीक है लेकिन घरवाले के लिए, आपको घरवाला कभी नहीं बोलेगा कि ठीक है, आप सब कुछ दो घरवाले को लेकिन वो कभी नहीं बोलेगा कि आदमी परफेक्ट है, बिल्कुल बराबर, बड़े पागल है ये, बाहर ही सब कुछ करता रहता है, तीर्थों में जाता है, साधु महात्मा सत्संग ये वो, बोले घर पर कहां ध्यान है। तो नारायण ये सुख की क्षणिकता, ये सुख की अस्थायीता है, इसलिए आप इसके चक्कर में मत पड़ना, ठीक है मिले तो ठीक है और न मिले तो भी ठीक है, आप दुखी मत होना। संसार के सुख आपको मिले अथवा न भी मिले तो आपको उसमें पड़ना नहीं है ज्यादा, ठीक है। आपकी बहुत किसी ने प्रशंसा की तो आप प्रशंसा को पकड़ना मत, क्योंकि आपको पता होना चाहिए उस समय, या अभी प्रशंसा कर रहा है शाम को फिर गाली देगा ये, अभी बोल रहा है कि तुम जैसे कोई नहीं, लेकिन शाम को बोलेगा कि तुम्हारे जैसा कोई कबाड़ा नहीं बोल देगा। इसलिए यहां नहीं अटकना है अपने को, ये अध्यात्म आपका वेदांत आपका वैराग्य आपको दोनों चीजों में समत्व में ले जाते हैं, आप दोनों अवस्था में आप सम रहो। ये अभी प्रशंसा कर रहा है, ये कल गाली देगा, ये गाली दे रहा है फिर ये प्रशंसा करेगा, दोनों अवस्थाओं में उसके प्रति समत्व रखो, ठीक। और बालक नचिकेता को ऐसे सुख की खोज है जो सुख कभी नहीं मिटने वाला हो, कभी नहीं मिटने वाला। बुद्ध क्या कमी है, बुद्ध राजकुमार है, वहां सुख की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन आप बुद्ध को पूछना आप सुखी हैं, बुद्ध कहेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा दुखी आदमी मैं हूं, वहां खाने का सुख है, बिछोने का सुख है, पत्नी का सुख है, पुत्र का सुख है, राजकुमार होने का सुख है, लेकिन वो सुख नारायण उनको सुख मालूम नहीं पड़ते, उनको मालूम है ये सारे दुख है। और वो निकल पड़े, किस लिए निकल पड़े, वो अक्षय सुख की खोज के लिए, ऐसा सुख जो कभी खत्म न होने वाला हो। इसलिए यहां आपके 29वें श्लोक में नारायण जरा मरण, आपके जीवन में जो जरा है और मृत्यु, भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को कहा, आपके जीवन में जरा का, मृत्यु का और इस भौतिक पदार्थों का दुख बहुत अनंत दुख है। और बुद्ध निकल पड़े उस अत्यंतिक दुख निवृत्ति के लिए, निकल पड़े ऐसे सुख के स्रोत को खोजने के लिए, निकल पड़े जो स्रोत कभी खत्म नहीं होता है। और वो स्रोत और कौन हो सकता है? वो स्रोत तो परमात्मा है, वो स्रोत तो हमारी आत्मा है। हम इंद्रियों से मिलने वाले सुख को हम स्थायी समझते हैं, लेकिन वो कभी स्थायी हो ही नहीं सकता है। इस शरीर से मिलने वाला जो सुख है ना, वो कभी स्थायी नहीं हो सकता है। अच्छा, आंख से मिलने वाला सुख कभी स्थायी होगा क्या? भैया, ये आंख ही स्थायी नहीं, तो उससे मिलने वाला सुख स्थायी कहां होगा? और जो वस्तु हम देख रहे हैं ना, वो भी तो स्थायी नहीं, वो हमको कहां से स्थायी सुख देगी? हम जिसको चख रहे हैं, न जीवा स्थायी है और न जिसको खा रहे हैं। इसलिए इंद्रिय जन्य जो सुख है वो बिल्कुल क्षणिक है, वह इंद्रिक संवेदना मात्र है। इसलिए बालक नचिकेता ने कहा, अभिध्यायन वर्ण रति प्रमोदाह नाति दीर्घे जीवित जीविते को रमेत। जो विवेकी पुरुष यहां को रमेत, उसमें कौन रमेगा? तो यहां शब्द का प्रयोग करना चाहिए, कौन विवेकी रमेगा? ऐसा कौन विवेकी रमेगा ऐसे क्षणिक सुख में, जिसका कोई भरोसा नहीं है। अविध्यायन वर्ण रति प्रमोदा, अविध्यायन का वृत्त चिंतन करता हुआ, उसके प्रति महत्व बुद्धि रखता हुआ, रति प्रमोद आमोद ये ऐश्वर्य जन्य सुख बोले कौन रमेगा? नहीं, मतलब साफ साफ इनकार कर दिया। ये बात आचार्य यम के सामने बोल रहे हैं बालक नचिकेता, ये बड़ी बात है। आज अपने गुरु के सामने इतनी बात बोलना, तो समझना कि बालक नचिकेता कितना बुद्धिमान, बड़े आदमी के सामने तो अपनी बोलती बंद हो जाती है लेकिन अंदर का जो वैराग्य है ना, आज वो बिल्कुल अंदर से बोल रहे हो, अंदर की जो भावना है वो व्यक्त कर रहे हैं। यस्मिन् निदम् विचिकित्सन्ति मृत्यो यत् साम्प्राये महति ब्रूहि नस्तत् योयम् वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यम् तस्मिन् नचिकेता वृणीते। अंत में इस वल्ली का ये अंतिम श्लोक है, उन्होंने इसको उपराम लगा दिया। उन्होंने मांगने की जो प्रक्रिया थी नारायण, अंतिम निश्चय पूर्वक उन्होंने कहा, यस्मिन् निदम् यस्मिन् विचिकित्सन्ति मृत्यो, हे मृत्यो, आप कितना भी मुझे लौकिक प्रलोभन दे, लेकिन मैं केवल वहीं वर चाहता हूं जिसके बारे में लोग विचिकित्सन्ति माने संशय करते हैं, लोग विचार करते हैं, देवता लोग भी जिसके बारे में विचार करते कि वो चीज हमें मिल जाए। बालक नचिकेता जो पूछ रहे हैं ना, ये सीधे सीधे आत्मज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान दे रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, बालक नचिकेता कोई निष्कर्ष की बात नहीं कह रहे, आस्तिकता की भी बात नहीं कह रहे बालक नचिकेता। एक आस्तिक होता है, एक नास्तिक होता है और तीसरा जिज्ञासु होता है। आस्तिक निश्चयात्मक होता है, आस्तिक को मालूम है आत्मा है, उसको मालूम है परमात्मा है, जीवन के मृत्यु के बाद भी जीवन है, ये आस्तिक व्यक्ति को मालूम है, लेकिन वो संतुष्ट है, जितना उसको पता है उतने में वो संतुष्ट है, मानता है आत्मा है, वो परमात्मा है, लेकिन उसकी पाने की कोई अलग से चाह, संतुष्ट है, ठीक है। लेकिन आप मीरा को देखना, मीरा में और हमारे में अंतर क्या है? मीरा को भी मालूम है वो है, और हमको भी मालूम है, लेकिन दोनों में अंतर, हम अस्तित्व बोध में ही संतुष्ट हैं और मीरा चाहती कि अस्तित्व मेरे जीवन की प्राप्ति बन जाए, वो चातिक अस्थि हमारे मेरे जीवन की प्राप्ति बन जाए और हम अस्थि में ही संतुष्ट। जो अस्थि में संतुष्ट है ना उसी को आस्तिक बोलते हैं। और बालक नचिकेता चाहते हैं कि भैया वो आस्ति जो है ना वो मेरे जीवन में प्राप्ति बन जाए, इसलिए बालक नचिकेता एक आस्तिक की तरह नहीं बोल रहे हैं और वो नास्तिक की तरह बोल रहे हैं। नास्तिक की तरह बोलते तो वो बोलते हैं वो कुछ भी नहीं है। और एक मजेदार बात, बालक नचिकेता कभी नास्तिक नहीं हो सकते, कारण शरीर तो छूट गया मृत्यु लोक, और बालक नचिकेता कहां पहुंचे यम लोग, और आज बालक नचिकेता कहां पर है यम लोग में, यम के सामने, और शरीर तो पड़ा है, पड़ा नहीं है वो तो जला दिया जा चुका है क्योंकि 3 दिन हो गए। बालक नचिकेता का शरीर उनके माता पिता के पास पड़ा और उन्होंने सोचा मर गया, गया यम लोग, और शरीर को रखा क्या उन्होंने, वो तो जला दिया गया। बालक नचिकेता ने इसलिए कहा था कि जब मैं अपने पिता के पास जाऊं तो मेरे पिताजी मुझे पहचाने, नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि भूत प्रेत समझ के मेरी उपेक्षा न कर दे। माम अभिवदेत माम प्रतीत, वो मेरे से पहचाने और मेरे से बात भी कर ले। और बालक नचिकेता को पता है कि शरीर से अतिरिक्त मैं हूं। आज बालक नचिकेता ही कह सकते हैं दावे के साथ कि शरीर के मरने के बाद भी इस जीवन का अस्तित्व है, इसलिए बालक नचिकेता कभी नास्तिक नहीं हो सकते। पुनर्जन्म को इनकार करने वाले कभी नहीं हो सकते हैं। शरीर से भी अतिरिक्त अस्तित्व के बारे में वो संदेह नहीं कर सकते, लेकिन आज बालक नचिकेता जिज्ञासु बन के प्रश्न कर रहे हैं, न आस्तिक बनकर न नास्तिक बनकर, आप ही तो बालक नचिकेता एक जिज्ञासु बनकर प्रश्न कर रहे हैं। और जिज्ञासु का मतलब है संदेह, भैया मैं आ तो गया, शरीर से अतिरिक्त कोई तत्व है, लेकिन वो कौन सा तत्व है, वो क्या तत्व है। लोग विवाद करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं नहीं है, और मैं भी कहता हूं कि भैया वो क्या चीज है, मैं है या नहीं कह सकता, मैं जानना चाहता हूं कि वो चीज क्या है। आज बालक नचिकेता उस आत्म तत्व के बारे में जानना चाहते हैं कि वो चीज क्या है, उनको मालूम है वो है लेकिन वो क्या चीज है। आपको मालूम है ना परमात्मा है, आपकी श्रद्धा है, आत्मा मालूम है आपको, आत्मा है इतना पता तो है, आप इनकार नहीं करते आत्मा है, लेकिन वो आत्मा कैसी है ये मालूम है क्या। कभी आपने चखा क्या आत्मा का स्वाद, हम तो स्वाद चखते हैं इंद्रियों का, हम स्वाद चखते हैं इस शरीर का, लेकिन आत्मा का स्वाद आपने अमरूद का स्वाद चखा है, आपने एप्पल का स्वाद चखा है, आपने दाल सब्जी रोटी का स्वाद चखा, लेकिन उस आत्मा का स्वाद कभी चखा। अब आप प्रश्न मत करना उसको चखा जाता है कि नहीं क्यों नहीं भैया, वो विषय ही ना हो तो आप उसको जानेंगे कैसे, फिर आपको आत्मज्ञान होगा कैसे। आपकी अनुभूति का विषय तो होगा, तभी श्रुति कहते यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्मा, शास्त्र कहते आत्मा वारे दृष्टव्यो, आत्मा को अपने दृष्टि का विषय बना लो। देखो ये चखने का अर्थ ही दृष्टि का विषय बनाना है, चखने का ही अर्थ ज्ञान का विषय बनाना। ये इंद्रियां क्या करती हैं, इंद्रियां ज्ञात से सुख है क्या अज्ञात से सुख है। आपको इंद्रियों से जो सुख मिलता है वो ज्ञान जन्य सुख है कि वस्तु जन्य सुख है। ज्ञान जन्य सुख है वो, आपने देखा ज्ञान हुआ तब आपको क्या मिला सुख। आपने रसगुल्ला उठा के जीभ पर रखा और जीभ ने आपको ज्ञान करवाया और तब आपको क्या मिला। यदि जिह्वा की ज्ञान शक्ति खत्म हो जाए तो आंख आपको वस्तु को दिखाती है और उसके बाद हमें सुख मिलता है, और वो देखने की दृष्टि खत्म हो जाए तो कान आपको बस शब्द को पहले दिखा देते हैं सुना देते हैं, उसके बाद आपको आनंद होता है, और वो सुनाने की शक्ति खत्म हो जाए ज्ञान न हो तो इसलिए नारायण आपके जीवन में जो भी सुख है ना, वो सब ज्ञान जन्य ही है। वस्तु अज्ञात हो तो वो वस्तु आपको सुख नहीं दे सकती है। कितनी भी कीमती वस्तु लेकिन अज्ञात है, वो आपको सुख देगी क्या? यही तो चखना है। आत्मा, आत्म सुख, आप जो आत्म सुख बोलते हैं, वो आत्म सुख भी मिलेगा तो कब मिलेगा? ज्ञान होने के बाद मिलेगा। ज्ञान होने के बाद मिलेगा आत्म सुख। अनुभव में आएगा कब? जब हमें आत्मा का ज्ञान। अच्छा, अभी हमको अपना ज्ञान है क्या? अपना ज्ञान है, अपना ज्ञान है, तो वो अपना ज्ञान आत्मा का ज्ञान है कि इंद्रियों से मिला हुआ आत्मा का ज्ञान है? यदि इंद्रियों से मिले हुए आत्मा का ज्ञान होना तो समझना वो आत्मा का ज्ञान है ही नहीं है। हमको केवल पता चले मैं कौन हूं, मैं। अभी आपको कोई पूछे आप कौन है तो आप क्या बताएंगे? चट से मैं आपको पूछूं आप कौन है तो आप क्या बताओगे? चट से, हाँ, विचार नहीं करना है। आप तुरंत क्या बोलेंगे? मैं मधु बाबू। बोले दिखाई नहीं दे रहा है? आप बोलेंगे मैं दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इतना बड़ा आदमी यहां बैठा हूं। आप जब भी मैं शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो मैं के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होता है, कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होता है। मैं देख रहा हूं, देखना जुड़ गया, आंख जुड़ गई। मैं सुन रहा हूं, सुनना जुड़ गया, कान जुड़ गई। मैं बैठा हूं, उस मैं के साथ आपका बैठना जुड़ गया और ये शरीर भी जुड़ गया। माने जब भी आप मैं का ज्ञान करते हैं ना, तो कोई ना कोई चीज जुड़ी हुई होती है। आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं? आपने बोला कि हाँ, तो कान जुड़ गई। आप जैसे कान जुड़ गई ना, तो आपका होना जो है ना, मैं वो कान हो गया। ये मैं ऐसी चीज है। एक मैं आपको दृष्टांत सुना देता हूं। एक कोई छोटा सा बच्चा था और वो स्कूल जाता था, वो दो तीन एक दो कक्षा में, पहली कक्षा में जा रहा होगा। हाँ, पहली कक्षा में उसके मैडम ने सिखा दिया अंग्रेजी का, ए बी सी डी सिखा रही थी। आए माने अंग्रेजी का आए मैं होता ना, अंग्रेजी का आए मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू बोलते कि नहीं आप? आए माने मैं, मैडम सिखा रही थी। आए माने मैं सिखा रही, बार बार कर आए माने मैं, एक्टिंग करके बता रहे थे। आए माने मैं बच्चा सीख लिया, बड़ा बुद्धिमान था। घर गया, माँ ने पूछा, बेटा आज तुम्हारे मैडम ने क्या सिखाया है? बहुत प्रसन्न हुआ बच्चा, और प्रसन्न होकर माँ को बोला, मम्मी आज मैंने सिखाया आए माने मैडम। क्योंकि वो बच्चा बार बार देख रहा था ना आए माने, मैडम का हाथ किधर था? अपनी तरफ। आए माने मैं बच्चे ने कहा कि आए माने मैडम। मम्मी ने बता दिया, बेटा आए माने मैडम नहीं होता है, आए माने मैं होता है, आए माने मैं होता है, आए माने मैं होता है। बच्चा बड़ा बुद्धिमान था, समझ लिया बिल्कुल बराबर आए माने। और दूसरे दिन टीचर के पास गया सीखने के लिए, फिर टीचर ने पूछा, कहो बेटा तुमने आय का अर्थ क्या सीखा है? उस बच्चे ने बोला, आय माने माँ, आय माने मम्मी। समझ में आया? क्योंकि उसने देखा था आय माने मैं, माँ ने बोला था, मम्मी ने बोला था, आय माने मैं, उस इशारा था अपने तरफ, और बच्चा समझ गया आय माने। अब मैं पूछता हूं आपको, आय का अर्थ क्या है? मम्मी है कि मैडम है? आय का अर्थ मम्मी भी है, मैडम भी है, और उससे परे भी है। ऐसे आत्मा अहम जब आप बोलते हैं मैं, उसका अर्थ क्या है? ये ऐसा है, आय शब्द जिसके साथ जोड़ोगे वही उसका अर्थ बन जाएगा। आय यदि मम्मी के साथ जुड़ा तो उसका अर्थ क्या बना? और मैडम के साथ जुड़ा तो मैडम वैसे आप अहम बोलते हो ना, अहम, इस अहम का अर्थ वही हो जाता है जब उस अहम को आप जिसके साथ जोड़ दो। इस अहम को आंख के साथ जोड़ दोगे तो इसका अहम का अर्थ क्या हो जाएगा? आंख। आप अहम को कान के साथ जोड़ देंगे तो अहम का अर्थ क्या हो जाएगा? कान। और आत्मा के साथ जोड़ दोगे तो अहम ब्रह्मास्मि। आपने अहम को कहां जोड़ा? ब्रह्म के साथ। तब क्या बने आप? और आप उस अहम को आंख के साथ जोड़ोगे तो क्या बन गए? अरे यही तो है ज्ञान और जीव और ब्रह्म ज्ञानी। आप जीवात्मा बने अपने अहम को इंद्रियों के साथ, अपने अहम को तन के साथ जोड़ दिया तो आप जीवात्मा बन गए। और उस अहम को परमात्मा के साथ जोड़ दिए तो परमात्मा बन गए। आप अहम को जिसके भी साथ जोड़ दो ना, उस अहम का वही अर्थ बन जाता है। आप अहम को परमात्मा के साथ जोड़ो तो आपका अहम क्या बना? और अहम को आप इंद्रियों के साथ जोड़ दोगे तो उसका अर्थ क्या बनेगा? इंद्रियां, अनात्मा, जीवात्मा। इसलिए आज अहम जो है ना, वो अपना अहम निरपेक्ष हो जाए, तन निरपेक्ष, इंद्रिय निरपेक्ष, मन निरपेक्ष, बुद्धि निरपेक्ष, और उन निरपेक्ष अहम का बोध आपको हो, वही आत्म तत्व का बोध है। और वो आत्म तत्व का बोध आपको ले जाएगा सुख में। और वो कौन सा सुख होगा? आत्म सुख। अभी तो इंद्रिय जन्य, इंद्रियों के साथ हम अपने अहम को जोड़ते हैं और इंद्रिय जन्य ज्ञान विषयों का सुख है। लेकिन वहीं जब हम अपने अहम को जान लेंगे तब वो जो सुख मिलेगा वो कौन सा सुख होगा? आत्म सुख। समझ में है ना? इसलिए अनात्म निरपेक्ष, इंद्रिय विषय निरपेक्ष, बुद्धि निरपेक्ष, जो स्वतत्व का बोध है। आप कभी आंख बंद करके बैठो और सोचो कि मैं कौन हूं, लेकिन वो मैं आप अन्यत्र कहीं जोड़ना मत, तन इंद्रियां आदि को कहीं नहीं जोड़ना। और जो निरपेक्ष स्व का जो बोध है ना, वही आप। आज बालक नचिकेता उसी आत्म तत्व के सुख को पाने के लिए बालक अपना आचार्य यम से प्रार्थना कर रहे हैं। नान्यम तस्मा नचिकेता वृणीते। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन मैं तो केवल वही तत्व चाहता हूं, उसी आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहता हूं। इसके अन्य मुझे कोई वर श्रेष्ठ वस्तु को पाने की अपेक्षा नहीं है। यहां आपकी प्रथम वल्ली पूरी हो गई, कल हम लोग दूसरी वल्ली में प्रवेश करेंगे। आज प्रवचन को ये विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।